हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुराणों में कथा आती है कि तीन महासतिया थी और वो एक बार श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु को मिलने गई। तो वहां पर उन्होंने चार कुमार भी वहां पर आए थे, उन्होंने चार कुमारों को वंदन करना भूल गई वो। तो उनको शाप प्राप्त हुआ कि तुमको पृथ्वी पर जाना होगा और जन्म लेना होगा, लेकिन चिंता मत करना। भगवान विष्णु कहते हैं जब शाप मिलता है तो कि ये शाप नहीं वरदान होगा आपके लिए, क्योंकि जो तीन प्रमुख देवियां हैं वो आप लोगों के गर्भ से जन्म लेंगी। तो एक बनी सुनैना जो हिमालय की पत्नी बनी और उसके गर्भ से पार्वती का जन्म हुआ। एक बनी नैना जो जनक राजा की पत्नी बनी और जिसने सीता जी को जन्म दिया। और एक बनी कलावती जिसके गर्भ से फिर राधा रानी का जन्म हुआ, ठीक है ना। तो जब भी पार्वती का जन्म हुआ हिमालय की गोद से, तो विंध्याचल को बहुत द्वेष हुआ मन में कि पार्वती अन्नपूर्णा है और अभी हिमालय को अन्नपूर्णा जी का प्राप्ति हुई है तो मुझे भी कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। इसलिए उन्हें तपस्या शुरू किया। यथावकाश उनको 9 कन्या प्राप्त हुई, एक राधा रानी और उसके 8 सखियां, उनका जन्म हुआ। और जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ उसके समय आकाश में जब देवी गई ना, वो 8वें गर्भ के बाद में कन्या, तो उसने जब बताया ना कि मूर्ख हंस तुम्हारा काल तो जन्म ले चुका है कहीं और, बेकार में देवकी को कष्ट देना बंद कर दो। और साथ में बताया है कि उनकी भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसका भी जन्म हो चुका है, अपने अंतरंगा शक्ति के साथ शक्तियों के साथ में जन्म हुआ है उसका। तो कंस को पता चला कि जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है वो विंध्याचल के पुत्री के रूप में उसका जन्म हुआ है। तो कंस क्या करता है, पुतना को भेजता है कि जाओ उन सब कन्याओं को कैप्चर करके मेरे पास लेके आओ, क्योंकि उनके होने से समृद्धि ज्ञान भक्ति जो भी कुछ है सब जो प्राप्ति सिद्धियाँ सब है तो सब मेरे पास रहेंगी। तो पुतना चलती है और पुतना जाकर इस 9 कन्याओं को पकड़ लेती है, आकाश से उड़ती जाती है और 9 कन्याओं को पकड़ लेती है। जैसे ही विंध्य पर्वत है ना, जो व्यक्ति विंध्य पर्वत देखता है कि पुतना राक्षसी मेरे बच्चों को लेके जा रही है आकाश में उड़ रही है, तो वो तपस्या करने बैठते हैं और इतना भयंकर तपस्या करते हैं कि उनके तपस्या के बल से पुतना के शरीर में बहुत भयंकर अग्नि उत्पन्न होती है, मतलब आग आँच उत्पन्न होती है। तो ये वो बालकों को पकड़ नहीं पाती अपने हाथ में, तो इतनी गर्मी की वजह से एक एक बालिका को छोड़ देती है वो। और वो सब बालिकाएं जो है वो ब्रज में जाकर गिर जाती हैं कि कुंडों में, यथावकाश अपने अपने पिताओं को प्राप्त हो जाते हैं। इन शॉर्ट ये कथा है। विस्तार में कथा ऐसी है कि जब ये घटना हुई उसके पहले की बात है, ये सुचंद्र और कलावती जो मैंने कहा ना, उसकी एक कन्या जो है वो सुख कल्यावती बनी। सुचंद्र और कलावती का विवाह हुआ और उन्होंने भगवान के लिए तपस्या आरंभ किया और 12,000 साल देवताओं के तपस्या किया, केवल पेड़ से गिरते हुए पत्तों को खाते हुए इंद्रियों को दमन करते हुए भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने तपस्या किया। उसके अंत में ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया उनको और कहा तूने वो वर मांगो। तो सुचंद्र कहते हैं कि हमें मुक्ति दे दो, तो ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। तो कलावती को बड़ा गुस्सा आता है, इनको मुक्ति देंगे तो मेरा क्या होगा, तुमने ऐसा वर कैसे दिया उनको, तो क्रोध क्रोध किया उसने। तो ब्रह्मा जी जानते थे कि महासती है, इसका क्रोध मुझे भी भारी पड़ेगा। तो कहते कोई बात नहीं, इनका मोक्ष होगा उस उतने समय आप और मैं, आप और आपकी पत्नी दोनों मिलकर मेरे लोक में रहना, ब्रह्मा लोक में, क्योंकि तो उनको इच्छा थी कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो कन्या के रूप प्राप्त हो जाए, और ये इन्होंने मोक्ष के लिए हाँ कर दिया, तो कन्या कैसे होगी फिर? ब्रह्मा जी रास्ता निकालते, बोले कोई बात नहीं, डरते भी ब्रह्मा जी कि महासती का शाप मिलेगा तो मेरा कल्याण नहीं होगा, दोनों को आमंत्रण करते हैं कि मेरे लोक में, ब्रह्म लोक में आके रहो, और जब समय आएगा भगवान के अवतार का तो भगवान की जो शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, वो भी अवतार लेंगी, तब आप फिर पृथ्वी पर आना। तो वो अपने ब्रह्मलोक में उनको लेके गए हैं और उनके अपने पास रखा है। फिर यथावकाश सुचंद्र और कलावती, ये कीर्तिदा और वृषभानु महाराज के रूप में जन्म लेते हैं। वृषभानु महाराज के पिताजी का नाम था इंदुसेन, सॉरी कंजभानु नाम का उनका, और उनको 9 पुत्र हुए, एक वृषभानु और बाकी 8 भानु, 4 बड़े 4 छोटे। और कलावती का जन्म हुआ कीर्ति मैया के रूप में, उनके पिताजी का नाम था इंदुसेन और माता का नाम था मुखारा देवी। हाँ, और उनका गांव जो है वो राधाकुंड के बिल्कुल पास में है। तो ये नंद बाबा और वृषभानु महाराज दोनों बड़े मित्र थे, दोनों गोप थे, महागोप थे, वो दोनों की बड़ी मित्रता थी। लेकिन वृषभानु महाराज नंद बाबा से अमीर थे, तो उनका नाम भानु है, क्योंकि मिनिमम 12 लाख गाय उनके पास होती है और मिनिमम 9 लाख गाय जिनके होते हैं नंद की उपाधि मिलती है उनको। तो उनकी बड़ी दोस्ती थी, लेकिन एक ही दुख था सब लोगों को कि इतने अच्छे राजा हैं, इतने सद्गुण संपन्न हैं, संतान नहीं है उनको। तो फिर वृषभानु महाराज और ये सलाह करते हैं दूसरे से कि हम लोग जमुना के किनारे जाएंगे और जमुना के सानिध्य से हमको संतान प्राप्ति हो सकती है। तो नंद बाबा जाके बस गए गोकुल में और वृषभानु महाराज जाके बस गए रावल में, दोनों जमुना किनारे में। और वृषभानु महाराज रोज सुबह उठकर अपना भोर के समय पर ध्यान करते थे और अपने कुंड में स्नान करते थे। तो जब ये यहाँ घटना हो रही है, वहाँ से लेकर पुतना उड़ी आकाश में, हाँ ऐसे कहते हैं, तब तक ये कन्याएं सब 1 साल की हो चुकी थी, ऑलरेडी देवर 1 ईयर ओल्ड ऑल ऑफ देम। सबकी उम्र है ना, श्रावण नहीं सॉरी भाद्रपद शुद्ध तृतीया से भाद्रपद शुद्ध पूर्णिमा तक सबका जन्म हुआ है, एक के बाद तृतीया से लेके पूर्णिमा तक सभी 8 सखियों का जन्म हुआ है, और उसमें विशाखा देवी, राधा रानी और चंपकलता, इनका जन्म एक ही दिन में हुआ है, अष्टमी के दिन। तृतीया में फिर चित्रा सखी का जन्म हुआ है, ऐसे सबका जन्म लाइन से हुआ है, और पूर्णिमा के दिन लास्ट सखी का जन्म हुआ है। तो सब वैसे समावयस्क थी ना, वो एक ही उम्र की थी, तो सबकी 1 साल की उम्र हो गई थी तब वो पुतना उनको लेकर आकाश में उड़ गई थी। और उस दिन जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब ये उठे और अपने कुंड में स्नान करने गए, तब उनको अपने कुंड में एक अजीब दृष्टि नजर आई, रात के अंधेरे में एकदम सुनहरा प्रकाश नजर आया कुंड से निकलता हुआ। तो जल में उतरे और उसके पास गए प्रकाश के, तो क्या देखा कि प्रकाश एक जल से नहीं आ रहा है, एक जल में अनंत पंखुड़ियों का एक कमल है, उसमें से प्रकाश आ रहा है। फिर और पास आते हैं तो देखते हैं कि वो कमल से भी नहीं आ रहा है प्रकाश, वो कमल के अंदर एक कन्या है, उसके शरीर से प्रकाश आ रहा है। बड़ा अचंभित होता है उनको कि अरे मेरे कुंड में ऐसा तो कभी सिद्ध नहीं था, पहली बार दृश्य नजर आ रहा है। तो वो जब अचंभित होते हैं तभी आकाश में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुमने पिछले जन्म में सुचंद्र और कलावती के रूप में 12,000 साल तपस्या की थी और मुझसे वरदान प्राप्त किया था कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है गोलोकेश्वरी राधा रानी, वो आपके कन्या के रूप में जन्म होगा उसका, और वो अभी आज तुम्हारे लिए यहाँ विराजमान है, उसको स्वीकार करो, अपने घर ले जाओ और लालन पालन करके उसको बड़ा करो। तो बड़े खुश होकर वो कन्या को लेकर जो ऑलरेडी 1 साल की थी, हाँ लेकर वो जाते हैं घर पे, बड़ी खुशी होती है उनको कि अपनी कन्या प्राप्ति हुई है। लेकिन उनको खुशी नहीं भी होती है क्योंकि वो अंधी भी है, बहरी भी है और गूंगी भी है, ना कुछ बोल रही है, ना कुछ सुन रही है, ना कुछ देख पा रही है। तो कैसे उसके वैसे बच्चे का उत्सव मनाएं? खुशी भी हो रही है और इतनी सुंदर उसके कोमल अंग है, इतनी सुंदर उसके अवयव थे, इतना रंग उसका सुंदर था, इतना प्रकाश था शरीर में उसके, इतना पवित्रता का अनुभव हो रहा था उनको, फिर भी क्योंकि ये गूंगी और बहरी और अंधी थी, इसलिए उनका उत्सव नहीं मनाया उन्होंने, बड़े दुखी थे वो। यहाँ पर क्या हुआ, नारद मुनि ने जैसे ही उनका अवतार होने का समय आया तो एक गणित बनाया, चार्ट बनाया, चार्ट पूरा पृथ्वी का, और वहाँ पर ऐसे अपने गणित से मार्क किया कि इस जगह पर उसका जन्म हुआ है। तो ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाते हैं, वृषभानु महाराज के महल में आ जाते हैं, कहाँ पर, रावल में। और रावल में आकर पूछते हैं कि यहाँ पर कोई कन्या का जन्म हुआ है क्या, तो वृषभानु महाराज और कीर्ति मैया संकोच से कहते हैं कि यहाँ कोई कन्या का जन्म नहीं हुआ है, हमारे पास तो केवल एक पुत्र है। और श्रीदामा को आगे करते हैं कि हमारा पुत्र है। तो वो बड़े दुखी होते, नारद मुनि बड़े दुखी होते हैं, अरे मेरा गणित इतने मैंने अच्छी तरह चार्ट बनाया और पता है कि यहीं पर जन्म हुआ है, तो ये तो नहीं कह रहे हैं। तो बड़े दुखी होकर वहाँ से निकलते हैं, जब जाने जाते हैं तो उसके बाद में वृषभानु महाराज और कीर्ति मैया चर्चा करते हैं कि महाराज तो बड़े पावरफुल थे, तेज वाले थे, बड़े सिद्ध बाबा लग रहे थे, हो सकता है इनके आशीर्वाद से हमारी कन्या आंखें खोले, कुछ सुने, कुछ बोले, क्योंकि महात्माओं के संग में तो बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो सखियों के पीछे जाओ जाओ जाओ, उनको बुला के ले जाओ। तो ये दुखियों के आगे जा रहे हैं तो सखियाँ पीछे भाग भाग के आ रही है, महाराज जी रुको, महाराज जी रुको, आपको दोबारा बुला रहे हैं। तो भाग के लौट के आए, वो चिंता में थे कि मेरा गणित रॉन्ग कैसे हो गया। लौट के आते भाग भाग के, तब ये कहते हैं कि हमारे घर में कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन समस्या ऐसी ऐसी है, इसलिए हमने आपको बताने में संकोच किया। तो कहाँ पर है वो, तो उसको अंतपुर में लेके जाते हैं, जहाँ पलने में श्री जी जो है लेटी रहती है। तो देखते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और उनको श्री जी महारानी का 16 वर्षीय किशोरी अवस्था का दर्शन करने की इच्छा थी, 16 ईयर ओल्ड फॉर्म किशोरी का। तो क्या करते हैं, उनको कहते हैं आप चिंता मत करो, आप बड़ा उत्सव बनाने में संकोच मत करो, बड़ा उत्सव बनाओ इस जन्म का। और उत्सव में नंद बाबा, यशोदा माई और कृष्ण बलराम को बुलाना मत भूलना। और कैसे उत्सव बनाना, उसके बड़ी यादें बनाते हैं, ये करो वो करो, ये लेके आओ वो लेके आओ, सबको अपने काम पे लगा देते हैं तुरंत, और सब लोग वहाँ छोड़ के चले जाते हैं और अकेले राधा रानी और नारद मुनि कमरे में बचते हैं। तो जैसे ही ये होता है दर्शन, अकेले होते हैं, तो राधा रानी उनका 16 साल की उम्र की सुंदर अवस्था में दर्शन देते हैं उनको। नारद मुनि दर्शन देके बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर दंडवत करते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। और फिर नारद मुनि को नारद मुनि राधा रानी को बोलते हैं कि आप अभी मुझे आपका अष्ट सखियों के साथ दर्शन करना है। तो वो कहते हैं कि आपको कुसुम सरोवर जाना होगा, जो बताया ना कथा आपको, वहाँ जाना होगा, वहाँ पर दर्शन होंगे आपको। तो नाचते हुए वहाँ जाते हैं, कैसे नाचते हैं, नाच रहे हैं, गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर गोल घूम रहे हैं, फिर नाच रहे हैं, फिर लोटपोट हो रहे हैं, ऐसे करते 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 कुसुम सरोवर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते ही माधवी गोपी वहाँ से आती है, किस जगह लिखा है कि वृंदा गोपी आती है, कोई बात नहीं, वृंदा गोपी आती है, माधवी गोपी एक ही बात है। वो आती है और नारद मुनि को हाथ पकड़ के कुसुम सरोवर के दक्षिण कोने में जल में स्नान कराते अपने हाथ से। जैसे स्नान होता है तो नारद मुनि का रूपांतर नारदीय गोपी में हो जाता है, ही बिकम्स अ गोपी। फिर हाथ पकड़कर उसका श्रृंगार करती है नारद मुनि, गोपी जो है वो नारद मुनि को श्रृंगार करती है, गोपी बनाकर सजाती है अलंकार से, वस्त्र से, फिर हाथ पकड़कर उनको कुसुम सरोवर के मध्य में लेके जाती है, जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन कुसुम सरोवर के मध्य में एक रत्न सिंहासन है, एक सुनहरा बड़ा कमल है, उसके अंदर अनंत पंखुड़ियाँ हैं, उसके बीच के हिस्से में रत्न सिंहासन है और उस पर राधा और कृष्ण विराजते हैं, और 8 सखियाँ 8 पंखुड़ी पर खड़े होकर उनकी सेवा कर रही हैं। हम लोग आते हैं ना, वो वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतन मंदिर मनोहर, बाद में क्या बोलते हैं, अष्टदल वेष्टित है ना, वो उसर का वर्णन है, जहाँ पर इतना बड़ा सुंदर विशाल कमल है, एक एक पंखुड़ी एक एक कितनी विशाल है, उसके अंदर एक एक सखी खड़ी है, सब अपने अपनी सेवा कर रही हैं। तो इस सुंदर माहौल में जहाँ करोड़ों गोपियाँ खड़ी हैं, वहाँ पर माधवी गोपी नारदीय गोपी को हाथ पकड़कर बीच में लेके जाती राधा कृष्ण के सान्निध्य में, और वहाँ पर अष्ट सखियों के साथ में वो दर्शन करते हैं उनका, और सखी उनके हाथ में चामर देती है और वो चामर ढुलाते हुए दोनों के मुखचंद्र का दर्शन करते हैं। बहुत देर सेवा करने के बाद में, दर्शन करने के बाद में बार बार बेहोश होते हैं वहाँ पर भी, फिर वो आज्ञा मांगते हैं कि क्या आपकी आज्ञा है मेरे लिए। तो राधा रानी कहती है कि उनको कि आप ब्रज में रहो और भक्ति सूत्र का लेखन करो। तो वो कहते हैं कि मुझे तो शाप है दक्ष राजा का, मुझे कहीं पर 3 दिन के ऊपर रहने का अलाउड नहीं है मुझे, तो मैं कैसे रहूं और कैसे लिखूं। तो राधा रानी उनको समझाती है कि वो शाप केवल भौतिक जगत में लागू है, जहां पर जन्म मृत्यु होती है वहीं पर आपको ये शाप लागू है कि वहां पर आप 3 दिन के ऊपर रह सकते नहीं है, ये तो मेरा निज धाम है, मेरा घर है ये, हाँ गौलोक का, गौलोक धाम का प्रकटीकरण है, यहाँ पर आपको शाप लागू नहीं है, आप आराम से यहाँ पर रहो, इतना समय उतना रहना रहो और भक्ति सूत्र का लेखन करो। राधा रानी का आदेश लेकर नारद मुनि नाचते हुए आगे जाते हैं और थोड़े से आगे जाकर बस जाते हैं वहीं पर। उस जगह का नाम क्या है? नारद कुंड। वहाँ पर नारद मुनि निवास करते हैं, भगवान का भजन करते हुए नारद भक्ति सूत्र का लेखन करते हैं। वहाँ पर भी आ गया ना कृष्ण सरोवर वापस। और एक उसके आगे थोड़ी सी कथा है, जब वो वहाँ पर आए ना कुसुम सरोवर पे, तब वो वहाँ पर ध्यान लगाकर बैठ गए और ध्यान में उन्होंने क्या देखा, वो कुसुम वन के बीच में एक अशोक वन भी है, अशोक के वृक्षों का एक वन है बड़ा, एक अशोक के नीचे बैठकर वो ध्यान लगा रहे थे। तो अपने ध्यान में क्या देखा वो, कि सारे अशोक के वृक्ष जो है वो गोपियाँ बनकर सज सज कर रास में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ तक कि जिसके नीचे वो बैठे थे वो पेड़ भी गोपी बनकर रास में प्रवेश कर गया। उसके बाद में उनको गोपियों ने नहलाया है और गोपी बनाया है और अंदर ले गए। तो एक ऐसे वर्णन आता है गर्ग संहिता में कि कुछ गोपियाँ ऐसी होती हैं जो वृक्ष रूप में आती है, अनंत प्रकार की गोपियाँ होती हैं, बाय द वे अनंत प्रकार की गोपियाँ होती हैं। कुछ गोपियाँ ऐसी हैं जो रामचंद्र भगवान का उन्होंने दर्शन किया था दंडकारण्य में, जो ऋषि थे और ऋषियों ने इच्छा प्रकट की थी कि हमको आपका माधुर्य में संग करना है, श्रृंगार रस में। तो वो कहते कि इस जन्म में एक पत्नीव्रता हूँ, इसलिए अगले अवतार में आपकी इच्छा को पूरी करूँगा। तो वो गोपियाँ बनी हैं ऋषिचारी गोपियाँ कहते हैं उसको, ओके। एक गोपियाँ ऐसी हैं जो भगवान जब गए थे ना मिथिला में, सीता देवी का स्वयंवर में गए थे ना वो, वहाँ पर की स्त्रियाँ उनको देखकर आकर्षित हो गई थी, तो उनको भी उन्होंने यही जवाब दिया कि अगले अवतार में। फिर जब विवाह हुआ तो उनको लेकर अयोध्या में लेकर आए ना, तभी अयोध्या की वासिनी जो स्त्रियाँ थी वो भी उनको देख के मोहित हो गई थी, तो उनको भी कहा कि अगले जन्म में। फिर मत्स्य अवतार भगवान ने जब लिया तो समुद्र कन्या उनको देखकर आकर्षित हो गई थी, तो उन्होंने कहा कृष्ण अवतार में। फिर वराह अवतार हुआ, फिर कुर्मा अवतार हुआ, हर एक अवतार में जो जो स्त्रियाँ उनको देखकर आकर्षित हुई उनके सौंदर्य को देखकर, वो सारी स्त्रियाँ जो है अलग अलग गोपियाँ बनकर कृष्ण अवतार में प्रकट हुई। और एक गोपियाँ ऐसे प्रकार की है कि वो वेद वेद ना स्वयं वेद, जिसको हम कहते हैं श्रुति 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 जो देवियाँ थी, वो कहते हैं कि हे भगवान हमारे अंदर तो आपका वर्णन है नहीं, केवल वो आपका निराकार स्वरूप का वर्णन हम करते हैं, तो हमारा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान उनको गौलोक धाम का दर्शन कराते हैं। हाँ ध्यान से सुनना कथा को, भगवान सारी श्रुतियों को गौलोक धाम का दर्शन कराते हैं और क्या देखते हैं गोपियाँ और सब श्रुतियाँ गौलोक धाम में, कि अनंत गोपियाँ जो है भगवान के साथ में बड़े प्रेम का नृत्य कर रही है, वहाँ पर आनंद ले रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमको भी ऐसा भाग्य मिलना चाहिए, जितनी सारी गोपियाँ आपके साथ में दिव्य आनंद प्राप्त कर रहे सेवा कर रही हैं आपकी, तो हमको भी आपके सेवा करने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि फिर जब मैं कृष्ण अवतार में आऊँगा तो आपको गोपियाँ बनाऊँगा। तो उन्होंने कहा उनको क्या नाम मिला है, श्रुतिचारी गोपियाँ। ये गोपियाँ जो है वो नंदगांव में जन्म हुआ उनका, और ये गोपियाँ जो है इन्हीं का वस्त्रहरण होता है, जो लीला होती है ना चिरहरण की लीला, उसमें केवल वेदों की जो गोपियाँ थी उनका वस्त्रहरण हुआ है, और उसके चिरहरण की लीला के 5वें दिन के बाद में भगवान ने उनको रास में प्रवेश दिया है। जैसे अनंत प्रकार गोपियाँ, एक प्रकार गोपियाँ वो हैं जो ब्रज में जाकर लतापता बन जाती हैं, दे स्टे एज क्रीपर्स एंड ट्रीज एंड फ्लावरिंग ट्रीज एंड फ्रूटिंग ट्रीज एंड एट नाइट टाइम दे बिकम गोपीज एंड डांस विद कृष्णा, अगेन दे बिकम ट्रीज। तो वैसे ट्रीज थे वो अशोक वन में, जिसके नीचे नारद मुनि बैठकर ध्यान लगा रहे थे, और उनको ध्यान में दर्शन हुआ कि सारे पेड़ जो है वो गोपियाँ बनकर रास में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे अनंत प्रकार की गोपियाँ, आपको थोड़ा सा मैंने वर्णन किया, ऐसे बहुत सारा लंबा वर्णन है उनका, क्योंकि भगवान जब ये अवतार होने का समय हुआ ना भगवान का, तो पृथ्वी माता गाय बनकर गई थी ना विष्णु के पास। तो पृथ्वी माता गाय के पास जब गई थी गाय के बनकर, तो विष्णु ने कहा कि तुम्हारा उद्धार जो है वो केवल हरि कर सकते हैं, गोलोकेश्वर, मेरे हाथ से तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है। तो विष्णु स्वयं गाय को हाथ पकड़कर, मतलब गाय को पकड़कर ले जाते हैं गोलोक वृंदावन, और वहां पर कृष्ण भगवान का दर्शन होता है उनको, और उनके आंखों के सामने जो विष्णु उनको लेकर आए थे ना वहां पर गर्भोदक साई विष्णु, वो भगवान के शरीर में विलीन हो जाते हैं। फिर राम भगवान आते हैं सभी वानर सेना के साथ, लक्ष्मण सीता हनुमान के साथ, वो भी सारी सेनाओं के साथ में भगवान के शरीर में विलीन हो जाते हैं। फिर नरसिंह भगवान आते हैं हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी, नरसिंह भगवान जो है वो वहां प्रकट हो गए, वो भी कृष्ण भगवान के शरीर प्रवेश करते हैं। फिर नर नारायण ऋषि वहां प्रकट होते हैं, वो भी इन गाय के सामने भगवान के शरीर में प्रवेश करते हैं। और फिर ब्रह्मा जी वो सब खड़े ना वहां पर, क्योंकि पहले कैसे गई थी गाय ब्रह्मा जी के पास गई थी, ब्रह्मा जी सारी देवताओं को लेकर विष्णु के पास गए थे, और ये सब लोग मिलकर पहुंचे थे उधर गोलोक वृंदावन में। तो विष्णु तो चले गए भगवान के शरीर में, लेकिन ब्रह्मा जी वहीं खड़े थे, शिव जी वहीं खड़े, सब लोग खड़े देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो फिर भगवान उसके बाद में ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि अभी तुम लोग सब लोग जाके गोकुल में और मथुरा में जन्म लेना, यादव कुल में और रोशनी कुल में, यथावकाश में नंद बाबा का और यशोदा के पुत्र में रूप के रूप में आऊँगा मैं। और सब बताते हैं उसके बाद में कि कौन कौन सी गोपियाँ जन्म लेंगी, उसका वर्णन वहाँ पर आता है नरक संहिता में, कि भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि मेरी कौन कौन सी गोपियाँ कहाँ कहाँ से कैसे कैसे अवतार लेंगी। फिर सबका वर्णन उसके अंदर है, प्रद्युम्न कौन बनेगा, कामदेव प्रद्युम्न बनेंगे, हाँ द्रोण नाम के जो वसु थे वो नंद बाबा बनेंगे, जो ध्यायु नाम के वसु थे वो भीष्मदेव बनेंगे, कामदेव प्रद्युम्न बनेगा, लक्ष्मी देवी रुक्मिणी बनेगी, मेरे दाऊजी शेष महाराज जो है वो दाऊजी बनकर आएंगे। सबका वर्णन करते हैं पूरा कंप्लीट डिटेल में, जो भागवत में वर्णन करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि सुखदेव महाराज के पास समय बहुत कम था, क्योंकि परीक्षित जी महाराज तो गुजरने वाले थे। तो इतना विस्तार का वर्णन भागवत में नहीं आया, लेकिन गर्ग संहिता में पूरा वर्णन आया कि भगवान पूरा समझाते हैं कि कौन कौन क्या क्या बन के आएगा और क्या क्या लीला करेगा। शिवजी अश्वत्थामा बनकर आएंगे, सब वर्णन दिया पर लंबा डिस्क्रिप्शन। उस वर्णन में इन सारी गोपियों का वर्णन भी आया है कि कौन कौन से कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ गोपियाँ आएंगी। वो सब गोपियाँ एक समान नहीं थी, एक गोपियाँ थी नित्य सिद्ध गोपियाँ थी जो चिरंतन उसी रूप में रहती है, उसी रूप में यहाँ पर भी आती है, उसी रूप में गोलोक में भी रहती है, और बाकी गोपियाँ जो है साधना सिद्ध गोपियाँ थी जो तपस्या करके, जैसे कि वेद थे सब लोग तपस्या करके वहाँ पर पहुँचे, और एक थी कृपा सिद्ध, भगवान की कृपा से गोपियाँ बने, और बाकी ये सारे जो वर्णन दिए हुए हैं सारी गोपियाँ वहाँ पहुँच गई थी। और हर एक गोपियों के ग्रुप की सेवा अलग अलग थी, ऐसा नहीं कि सब लोग एक ही सेवा करते थे, उनका निवास भी अलग अलग था, कुछ नंदगांव में जन्मी, कुछ मथुरा में जन्मी, कुछ गोकुल में जन्मी, कुछ यहाँ जन्मी, कुछ वहाँ जन्मी, ऐसा बहुत विस्तार में वर्णन किया गया उनका। तो ये कथा राधा रानी के जन्म की हुई, और जब उन्होंने उत्सव मनाया नंद बाबा के नारद मुनि के आदेश के अनुसार, बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया, हाँ उसमें ऐसा वर्णन किया गया है कि सब जगह पर जितने गरीब लोग थे वो धनीराम हो गए, जहाँ पर अन्न की बहुत कमी थी उनके घर में अन्न के भंडार भर गए अपने आप। राधा का जन्म होते ही पूरे ब्रज में सब जितने भी गरीब लोग थे सबके घर में धन दौलत इकट्ठा जमा हो गई, और नंद बाबा ने विश्वानु महाराज ने सारे भंडार खोल दिए अपने एक एक करके, और ऋषि मुनियों को भंडार खोलते हुए दान करने लगे वो। तो सब अपने कपड़ा वस्त्र भर भर के मोती लेके जाते हैं, और आगे बढ़ते तो खबर पहुंचती है कि अभी रत्न का भंडार खोल दिया है, तो मोती वहीं फेंकते हैं और जाते हैं वापस दान लेने के लिए। तो रत्न लेते हैं और चलने लगते, तो आगे बोलते और एक भाजू आगे का भंडार खोल दिया है, तो रत्न वहाँ फेंकते हैं और आगे जाते हैं। इस तरह से कहा गया है कि ब्रज में सब जगह पर अनंत प्रकार के ज्वेल्स फैले हुए थे राधा रानी के जन्म का वो परिणाम के रूप में, मतलब इतना समृद्धि और ऐश्वर्य उनके होने से होता है। इसके प्रमाण के रूप में राधा रानी के जन्म के बाद में पूरे ब्रज के भूमि पर सब जगह पर ज्वेल्स फैल गए थे, अनंत ज्वेल्स, और वो और बांटते जा रहे थे और समाप्त नहीं हो रहा था उनके भंडार जो है, जितने बांट रहे थे उतने वो भरते 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 जा रहे थे। और राधा रानी का दर्शन करने के लिए, जैसे कहा है कि पार्वती जी, सरस्वती जी और सब जो देवियाँ थी, महान देवियाँ, वो सब, कोई फूल बेचने वाली, कोई झाड़ू लगाने वाली, कोई क्या बनने वाली, कोई मेहंदी लगाने वाली, कोई कुछ करने वाला, सब बहाना बना के रूप बदल के वो सब आई दर्शन करने के लिए। तो गोलोक धाम में दर्शन जो है वो किशोरी रूप का होता है, 16 वर्ष का होता है, और यहाँ पर दर्शन जो है बालक का हो रहा है, बालिका का हो रहा है। इसलिए वो दिव्य दर्शन करने के लिए नारद मुनि आते हैं, फिर पार्वती जी आती हैं, सरस्वती जी आती हैं, लक्ष्मी जी आती हैं, सब लोग, स्वर्ग की देवियाँ आती हैं। ऐसे ब्राह्मण ही बनकर आते हैं, कोई कोई दासी बनकर आते हैं, कोई फूल बेचने वाले बनकर आते हैं, कोई ढाड़ीन, कोई मालिन, कोई भंगीन, ऐसे बनकर आते हैं। और सब लोग राधा रानी का दर्शन करते हैं, नाचते हैं, गीत गाते हैं, डोनेशन लेते हैं, गिफ्ट देते हैं उनको, हाँ, सब आनंद लेते हैं। और उस समय नंद बाबा भी आते हैं, यशोदा भी आती है, कृष्ण बलराम भी आते हैं, और उनका स्वागत करते हैं बहुत बढ़िया से। उसके बाद में बातें में सब मशगूल हो जाते हैं, नंद बाबा पुष्पानु महाराज से और यशोदा मैया, कीर्ति मैया से बात करने लग जाते हैं। उतने में कृष्ण भगवान रेंगते हुए अंतपुर में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर राधा रानी विराजमान है, पढ़ने में कोई नहीं वहाँ पर। जैसे बालक चढ़ता है ना, बालक ऐसे 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 पकड़ के चढ़ता है ना, ऐसे ऐसे पकड़ के वो पलने को पकड़ के खड़े हो जाते हैं। उनको खड़े होने का अभी तक टाइम नहीं आया है, अभी तक रेंगते हुए बालक है वो, इज क्रॉलिंग। तो वो ऐसे पकड़ के खड़े हो जाते हैं, और ऐसे दो जगह वर्णन ऐसा आया है कि जैसे वो स्पर्श करते हैं, राधा रानी आँख खोलती है और तुरंत किल्लोड़ करती है। एक जगह वर्णन ऐसा आया है कि जैसे वो आते हैं, उनके शरीर के सुगंध से ही राधा रानी तुरंत आँखें खोल लेती है। क्योंकि जब कृष्ण भगवान गौलोक में ब्रह्मा जी को उपदेश कर रहे थे कि मैं आने वाला हूँ, तब राधा रानी बड़ी दुखी होकर व्याकुल हो जाती है और बेहोश होकर वहाँ गिर जाती है गोलोक वृंदावन में। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अभी ये जाए, छोड़ के जाएंगे तो मुझे विरह होगा इनका, तो उनको होश में लाते हैं और कहते हैं कि हम अकेले नहीं जाएंगे, आपको भी लेकर जाएंगे। तो कहते हैं मैं नहीं आ सकती, क्योंकि जहाँ गौलोक वृंदावन नहीं है, जहाँ पर जमुना जी नहीं है, जहाँ गिरिराज गोवर्धन नहीं है, वहाँ पर मैं नहीं आ सकती। तो कृष्ण भगवान तुरंत ही गौलोक वृंदावन का 84 कोस का हिस्सा निकालते हैं और जमुना जी और गोवर्धन के साथ में पृथ्वी पर भेज देते हैं। तो वो 84 कोस का जो हिस्सा है वो गौलोक वृंदावन ही है स्वयं। तो भगवान कहती है कि तुम्हारी इच्छा के लिए मैंने गौलोक वृंदावन को 84 कोस का हिस्सा जमुना जी और गोवर्धन को पृथ्वी पर भेज दिया है, तो अभी मैं आ सकती हूँ। तो मेरी और एक कंडीशन है कि जब मैं आऊँगी तब तुम्हारे दर्शन किए बिना, तुम्हारी ध्वनि सुने बिना मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं केवल आपको देखूंगी, आपको सुनूंगी और आपका ही अस्तित्व का अनुभव करूंगी, तभी मैं कुछ करूंगी। इसलिए वो वहाँ जब पड़ी थी तब से उसकी आंखें बंदी थी, जब वो कमल में थी तभी भी, और उसके बाद भी जब तक कृष्ण भगवान का दर्शन नहीं हो तब तक वो आंखें नहीं खोलती, उसके बाद आंखें खोल लेती है। ऐसा राधा रानी के जन्म की सुंदर कथा है। और आपको क्या सुनना है बताइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। एक बार राधा रानी थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हाँ, सत्ययुग का निर्माण हुआ, सत्ययुग के पहले, सत्ययुग का जब चालू हुआ तो ब्रह्मा जी ने 60,000 साल तपस्या किया। 60,000 साल तपस्या करने के बाद भी उनको कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। फिर सत्ययुग का पूरा उन्होंने अपना निर्माण का कार्य किया, जो भी अपना सेवा था सेवा किया। तो सत्ययुग के अंत में दोबारा उन्होंने 60,000 साल तपस्या किया। कितना हुआ कुल मिलके? 120,000 साल उन्होंने तपस्या किया। उसके अंत में भगवान ने दर्शन दिया उनको। भगवान कहते हैं क्या चाहते हो आप? वो कहते हैं कि आपके और आपके सखा सखियों के चरणों के धूल चाहते हैं। ये भी वही बात है, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, ब्रह्मा जी का पोजीशन क्या है? सबसे पहले स्वयंभू जीव है वो, इज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी मेड बाय गॉड हिमसेल्फ। प्रथम पुरुष है वो, प्रथम निर्माण है भगवान का, मतलब वो सीनियर मोस्ट है हाँ सबके ग्रेट ग्रैंडफादर वही है। महाराज जी बोलते हैं हमेशा कि लोग कभी कभी बड़े गर्व से अपना इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये मेरे चार बच्चे हैं और ये मेरे पोते हैं और ये मेरे ग्रेट ग्रैंड सन्स हैं। अपने 50 लोगों के परिवार का बड़े गर्व से वर्णन करते हैं। तो ब्रह्मा जी को कितना गर्व होना चाहिए, सभी जितने भी जीव हैं वो सब उनके पुत्र हैं और उनके पुत्रों के पुत्र हैं, पुत्रों के पुत्र के पुत्रों के पुत्र हैं। बट फिर भी इतना श्रेष्ठ स्थान उनका होने के बाद भी वो क्या चाहते हैं, गोपियों के और भगवान के चरणों की धूल चाहते हैं। उसका रास्ता क्या है, वो बोल रहे हैं आपके चरणों की धूल चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं, जाओ ब्रज में चले जाओ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे कहाँ जाऊँ, ब्रज तो इतना बड़ा है। वो बोलते हैं ब्रिश्वानुपुर चले जाओ, वहां पर पत्थर बनो। ऐसा नहीं बोला कि वहां पर तपस्या करो फिर दर्शन दूंगा आपको मैं वहां पर और सर पे पाँव रखूंगा आपका, ऐसा नहीं बताया। उन्होंने कहा कि वहां जाके पत्थर बनो, अनायास ही मैं और मेरी सखियां राजा रानी के साथ में वहां पर लीला करेंगी, तो अनायास ही आपको दर्शन भी होते रहेंगे और चरणों की धूल प्राप्त होती रहेगी। इसकी भी कहानी ऐसी है कि ब्रह्मा की पत्नी, विष्णु की पत्नी और शिव की पत्नी, इनकी बारे एक बार चर्चा हुई अपने दूसरे में, सबसे महान सती कौन है इसके अंदर पतिव्रता सती कौन है इसके अंदर। तो उनके पति कहते हैं कि आप तीनों भी नहीं हो, पृथ्वी पर एक है जो आपसे भी श्रेष्ठ है। तो उनको जरा लगता है अरे हमारे सामने और कौन हो सकता है, पृथ्वी पर की कन्या औरत बोला कौन है वो। तो वो कहते हैं कि अत्रि महाराज की पुत्री जो है पत्नी, क्या नाम उसका, अनसुया, हाँ वो महान सती है सबसे। तो वो कहते जाओ उसका टेस्ट करके आओ। मैं पतियों को ऑर्डर करती हूँ क्योंकि उन्हें आप अभी हम बोल रहे हैं कि हम श्रेष्ठ हैं इसलिए चर्चा कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं आप तीनों नहीं हो, जाओ हमको सिद्ध करके दिखाओ कि वो श्रेष्ठ हैं। तो वो तीनों जाते हैं पृथ्वी पर और साधु का अभेष धारण करते हैं और कहते भवती भिक्षान देही। तो अनसुई कहती कि आओ बैठो भोजन करो। नहीं नहीं हमारा एक कंडीशन है बोलते कि आपको निर्वस्त्र होकर हमको भोजन खिलाना पड़ेगा। अभी निर्वस्त्र होना है सती के लिए कितनी बड़ी कसौटी है। तो समझ जाती है कि वो इसमें कुछ दाल में काला है तो वो अंदर जाती है अपने पति का कमंडल लेके आती है और उसके जल से इन पर पानी फेंकती है, मतलब जल कमंडल से लेकर पानी फेंकती है। तो ये तीनों ऋषि जो है ना वो नंगे बालक बन जाते हैं छोटे से। फिर उनको पत्तल बिठाती है खुद निर्वस्त्र होकर। अभी छोटे बालक के सामने क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पतिव्रता का भंग नहीं होता है ना। तो बड़े ऋषि जो है दाढ़ी वाले वो छोटे से नंगे बालक बन जाते हैं। तो उनको पत्तल बिठाकर अच्छा भोजन कराती है। तो ये लोग इतने वात्सल्य से, इसके वात्सल्य इतने प्रभावित होते हैं कि वो बोलते हैं कि हम ऐसे रहेंगे, अभी यहाँ से जाएंगे नहीं हम लोग। तो वही रहते हैं बालक बन के, उसके वात्सल्य का अनुभव करते हैं, उसका स्तन पान करते हैं, उसका लालन पालन का आनंद लेते हैं और वही आनंद लेते वहीं रह जाते हैं। और ऊपर तीनों पत्नियाँ परेशान हो जाती है, अरे किधर गए, एक काम के लिए भेजा था वापस लौट के नहीं आए, कहाँ गए। तो खुद पृथ्वी पर ढूंढे आते हैं, उनको पता था कि इनके घर में गए होंगे, यहीं पर आए थे परेशान करने के लिए। तो वहाँ पे आके पूछते हैं कि हमारे पति कहाँ हैं, वो कहते देखो खेल रहे हैं वहाँ पर तो तीन नंगे बालक खेलते नजर आते हैं। तो ये पत्नियाँ कहती है बस हो गया अभी तुम्हारा लीला, अभी तुम दोबारा अपने स्वरूप में आ जाओ। तो वो प्रकट होते ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। फिर इच्छा प्रकट करते हैं कि हमको आपके अभी असली पुत्र बन के आना है। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जो है दत्तात्रेय के रूप में उनका जन्म हुआ है, इसलिए उनका नाम क्या है, अत्रेय। अत्रेय मतलब अत्रेय के पुत्र, इसलिए उनका नाम अत्रेय है, दत्तात्रेय मुनि, दत्तात्रेय भगवान का ये वरदान तो दिया और वो दत्तात्रेय बने। लेकिन साथ में अनसुया ने, सती ने उनको शाप भी दिया कि आप तीनों ने मेरी सतीत्व का परीक्षा करने का प्रयास किया ना, आप सब लोग पत्थर बन जाओगे। इसलिए ब्रह्मा जी पत्थर बने बरसाने में, शिव जी पत्थर बने कहाँ पर, नंदगांव में, और विष्णु कहाँ पत्थर बने, गोवर्धन, ये विष्णु बने। उस शाप का परिणाम है, लेकिन बने तो वो गौरवशाली बने। तो ब्रह्मा जी जब फिर बने, इसलिए ब्रह्मा जी का चार शीश है वहां पर और चार चोटियां बनी हुई है ना, इसलिए बरसाने का नाम क्या है, बृहत सानु उसका संस्कृत नाम है, मतलब बृहत बने की सुंदर, नहीं बृहत बने की चोटियां और सानु यानी सुंदर, जहां पर सुंदर पर्वत की चोटियां हैं उस गांव का नाम है बृहत्सानु, और इसलिए उसका नाम बरसाना बना है। और वृषभानु ग्रह कहते हैं उसको, वर्षानु भी कहते हैं, वृषभानु ग्रह भी कहते हैं, ऐसे उसका नाम है। तो इसमें चार शीश ब्रह्मा जी के हैं ना, तो ब्रह्मा जी की नाभि जो है वो गहवर कुंड के रूप में वहाँ पर प्रकट है। आपने देखा ना वहाँ पर गहवर कुंड, उसको कहते हैं राधा सरोवर भी कहते हैं उसको। तो वहाँ पर वो प्रकट है, उसका ब्रह्मा जी की नाभि है वो। तो वहाँ पर जो है राधा रानी अपने गिने चुने 64 सखियों के साथ में रोज स्नान करती है, और ग्वाल बाल जो है मोर कुटी से वहाँ पर लड्डू फेंकते हैं वो डिस्टर्ब करने के लिए। तो ये वृषभानु कुंड के किनारे पे, सॉरी गहवर कुंड के किनारे पे एक बार राधा रानी जो है वहाँ पर घर घर खेल खेल रही थी। पता है घर घर क्या होता है? कोई माता बनता है, कोई पिता बनता है, कोई बच्चे बनते हैं, फिर रसोई बनती है, फिर खाना होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है। हमने सब ने वो गेम खेला ना बचपन में, मैंने तो खेला है सब लोग वो खेलते हैं बचपन में। तो राधा रानी बड़ी प्रेम से वो खेल खेल रही थी सखियों के साथ में, और बर्तन मट्टी के थे, चूल्हा मट्टी का था, व्यंजन भी मट्टी के थे, चावल मट्टी का, दाल मट्टी की, सब मट्टी 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 मट्टी, सब रज रज की बात थी, सब कुछ सब रज रज का ही सब कुछ था वहाँ पर। लेकिन बहुत मशगूल होकर खेल रहे थे सब लोग, आनंद ले रहे थे बिल्कुल रज रज का। तो उतने में दुर्वासा मुनि वहाँ पर आते, तो सखियाँ तभी खेल खेल में जो माता बनी राधा रानी उसके आदेश से कुछ लेने गए थे, तो उनको दुर्वासा मुनि का दर्शन होता है, दुर्वासा मुनि का। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं महाराज जी आइए आइए, खीर बन रही है बहुत बढ़िया, हमारे श्री जी खीर बना रही है, आप आइए खाने के लिए। दुर्वासा को बड़ा गुस्सा आता है, वो देखते हैं कि सब मट्टी मट्टी का खेल चल रहा है, वो बोल रहे हैं खीर बन रही है, मुझे खिलाने की बात कर रही है, थोड़े शाप देकर भस्म कर दूंगा आपको। तो सब सखियाँ डर जाती है और भाग के राधा रानी के पास में आती है और कहती है राधा रानी, वो दुर्वासा मुनि बड़े गुस्से में, राधा रानी डर जाती है, तुरंत अपने घर भाग जाती है और अपनी मैया को कहती है कि वो दुर्वासा मुनि आए हैं, वो कुछ बड़े शाप देने की बात कर रहे हैं, वो भस्म करने की बात कर रहे हैं। तो कीर्ति मैया को बड़ा दुख होता है कि भाई पता नहीं दुर्वासा मुनि गुस्सा करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जानते कि महाराज जी आए तो हमको आना चाहिए उनको स्वागत करने के लिए, बात करने के लिए, इसलिए कन्या का हाथ पकड़ के वो वहाँ पर आ जाती है वृषभानु महाराज। तभी आग बबूले हो रहे वहाँ पर लाल लाल ना, उनको कहा गया है कि तुम मट्टी का बर्तन का बना हुआ मट्टी खाओ, मतलब बहुत बड़े अपराध की बात है। तो तब उनके अवतार को देखते हुए राधा रानी जो उंगली पकड़ के खड़ी है माता की, वो कहती है महाराज जी इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, आप खीर तो खा के चख तो सकते हैं ना, इतना की बड़ी बात है। राधा रानी की विशेष विशेषता ऐसे कि जब वो बोलती है ना तो मधुर संभाषिणी है, बहुत सम्मोहन संभाषिणी, मतलब जब बोलते हैं ना इस लाइक हिप्नोटिज्म, सामने वाला आदमी एकदम पागल हो जाए सुनकर क्या बोल रहे हैं। तो वही बात कह रही है वो, जो सखियों ने की थी वही बात उसने कही कि आप थोड़ा चखे तो देख लो, थोड़ा राजी हो जाते हैं, उनका ग्रोथ खत्म हो जाता है। और राधा रानी उनको मट्टी के बर्तन में मट्टी की खीर बना के हाथ में देती है और वो खाने लगते हैं उसको, तो उनके आंखों से अश्रु आते हैं, उनका कंठ गदगद होता है, उनके शरीर में रोमांच खड़े होते हैं और वो बेहोश से हो जाते हैं और आनंद से एकदम ऐसे पागल से हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आपको मैं वरदान देता हूँ कि जो भी आपके हाथ से बनेगा वो अमृत से अधिक स्वादिष्ट होगा और जो भी इसको खाएगा वो सब रोग से मुक्त हो जाएगा और हमेशा विजय प्राप्त करेगा, हमेशा विजयी होगा, यशस्वी होगा। तो ये बात सब ब्रज में फैल जाती है कि दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को इतना बढ़िया वरदान दिया है। फिर बात जो है वो घूमते 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 नंदगांव पहुंचती है। यशोदा मैया सुनती है कि श्री जी को वरदान मिला है कि उसके हाथ से जो बनेगा वो अमृत के समान स्वादिष्ट होगा और जो खाएगा वो रोग मुक्त होकर यशस्वी बनेगा, तो क्यों ना हमारे कान्हा के लिए उसके हाथ से खाना बनाया जाए। तो फिर वो बरसाने आती है और वहाँ पर कीर्ति मैया से रिक्वेस्ट करती है कि क्या आपकी बालिका को आप हमारे यहाँ भेज सकते हैं। वो तो तुरंत राजी हो जाते हैं और वहाँ पर उनको भेजते हैं। फिर रोज़ वहाँ पे आना, रोज़ जाना। यशोदा मैया अपने उनका एक खुद का कुंड है वहाँ पर नंद महाराज का, नंद सरोवर, उसमें वो एक खास कुआं बनाती है उसके लिए, जिस कुएं के जल से राधा रानी भोजन बनाएगी, उसे बना देती है फर्स्ट क्लास, और रोज़ उसको निहारती है, बड़े प्रेम से अलग व्यंजन बनाती है। कभी कभी ऐसे कहा जाता है कि वो कमरे भर के लड्डू बना के जाती थी ताकि कभी भी कृष्ण भगवान को खाने का मूड होगा, दिन में रात में बीच में कभी भी लड्डू मिलना चाहिए, उसको कहते हैं बंटा भोग, बंटा हो गया ना, उसको तुलसी लगती नहीं है, क्योंकि वो एनी टाइम उसको रखते हैं, एनी टाइम खा सकते हैं उसको। तुलसी रखा तो भोग लगे ना पूरा, इसलिए वो तुलसी के बिना भोग लगाते हैं उसको, बंटा भोग। इतना बड़ा लड्डू होता है वो, बहुत बढ़िया होता है। तो रोज़ वो देखती है उनको अच्छी तरह, वो इतना कुशलता से अपना भोजन बना रही है, रोज़ कृष्ण भगवान चख रहे हैं, कब मजाक कर रहे हैं, कभी कृष्ण भगवान मुँह से निकाल के फेंक रहे हैं, बोले इतना गंदा खाना मैं कभी खाया नहीं था। और सखा जो है उसको उठा उठा कर खा के नाच रहे हैं, इतना स्वादिष्ट खाना भी कोई खाना नहीं था। तो कृष्ण भगवान देखते हैं कि वो खिड़की से छुप छुप के राधा रानी देख रही हैं। जब वो देख रही है तभी वो मुँह से बोलते हैं इतना गंदा खाना मैंने कभी खाया नहीं था। सब सखा उसको उठा उठा के खाते हैं, ऐसे बहुत से लीलाएँ वहाँ पर। तो एक दिन राधा रानी जब भोजन बना रही है तो यशोदा मैया को रोज उसको देखती है, रोज निहारती है, रोज उसके मन में प्रेम होता है कि यही मेरे कान्हा के लिए, लाला के लिए अच्छी बहू है, सबसे इससे बढ़िया बहू कोई नहीं हो सकती। लेकिन रोज़ सोचती है, फिर छोड़ देती है विचार अपना, फिर रोज़ सोचती है। एक दिन तो उसका विचार इतना बढ़ता है कि वो अपने विचार को कंट्रोल नहीं कर पाती है, एकदम भाव विभोर हो जाती है, और तुरंत हल्दी लेकर उसके हाथ को लगा देती है, उसको बहुत ज़ोर से गले लगा देती है, आँखों से अश्रु बहते हैं बड़े भाव विभोर होकर। और राधा रानी बड़ी खुश हो जाती है कि मेरे मन की बात इसने जान ली, मुझे बहू बनाने का इन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो बड़े खुश होते हैं, जाने का समय आता है, खुश होते 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 गांव तक पहुंचते हैं, फिर होश आता है उनको, होश में आते हैं, अरे मैया को तो बताया नहीं, अपने आप सगाई करके लौट रही हूँ। क्या बोलेगी मैया, यही सिखाया था मर्यादा अपने आपको? हाँ, तो रोने लगती राधा रानी, अभी क्या बताऊँ माता जी को। ललिता जी कहते को चिंता मत करो, मेरे पास उपाय है इसके लिए, ये प्रिया कुंड है ना, ये आपका ही कुंड है, पिताजी ने बनाया वो आपके लिए, इस पर आप हाथ धो लो अच्छी तरह से, और इतना हाथ साफ करके हम किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि केवल हमको पता है और किसी को पता नहीं है, और निश्चिंत होकर घर जाना, किसी को नहीं बताएंगे। तो नेक्स्ट डे सुबह को वो हाथ धो के शाम को चले जाते हैं, और नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में सब ब्रजवासी अपना रोज का काम करने के लिए वहाँ पर आते हैं, कोई स्नान करने के लिए, गाय को पानी पिलाने के लिए। देखते तो क्या, आगे पूरा कुंड जो है वो पूरा पीला हो गया कंप्लीट। तो ये जो ब्रजवासी है ना बहुत चतुर होते हैं, चतुर, जैसे कि आप कैसे चतुर होते हैं, जैसे आपको अपनी लड़की को देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ लगता है इसका बॉयफ्रेंड अभी हो गया है, इसके चाल चलन अभी ठीक नहीं लगते हैं, हाँ अभी जाते रात को लेट आती है, कुछ बहाने बनाती है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, मतलब इसका दिल कहीं आ गया है, ऐसा आप देख के समझते हैं ना, पूरा सबको ये नॉलेज होता है। तो ब्रजवासी तो बड़े चतुर लोग हैं, उनको कैसा पता है, सबके दिल में एक ही बात है कि राधा का विवाह कृष्ण से होना चाहिए, सब लोग दिन रात यही सोचते रहते कि ऐसा ही होना चाहिए। और क्या देख रहे हैं कि रोज जा रही है, रोज आ रही है, रोज आ रही है, रोज आ रही है, ये तो रोज देख रहे हैं, वो सोच रहे कब होगा कब होगा कब होगा। उस दिन क्या सोचते हैं, अरे ये पीला कैसे हो गया, तो मन ही मन में कहानी बना लेते हैं कि हाँ रोज तो वहाँ जाती है, वो गई होगी, माता जी को तो मन में आता ही होगा कि मेरे बेटे के लिए इतनी बढ़िया बहू कहीं मिल सकती नहीं है, तो भाव विभोर हो गई होगी, और अपने आप के काबू खोते हुए हल्दी लगा दी होगी, अब आग्निशय कर दिया होगा, और यहाँ आकर वो डर गई होगी कि माता को क्या बताएंगी, कि डर के मारे यहाँ हाथ धोए होंगे इसलिए पानी पीला हो गया है, इसका मतलब सगाई हो गई है। सब भाग के पहुँचते हैं ऋषभानु महल में, तो कीर्ति मैया को पुकारते हैं, ऋषभानु महाराज के बात सच है क्या, हमने सुना है कि सगाई हो गई है। तो थोड़ा संकोच होता है, अरे ये क्या बात कर रहे हैं, ऋषि जी को बुलाते हैं, क्या बात है बताओ। तो संकोच में और डर डर के सब कथा बता देती है, कैसे ऐसे हुआ। तो मन ही मन बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह क्या बात है। तो इस घटना के मतलब उत्तर के रूप में ऋषभानु महाराज मोतियों का भंडार खोल देते हैं, और एक बैलगाड़ी में मोती भरते हैं पूरा, और नंदगांव भेजते हैं कि तुमने जो किया है वी आर ओके विथ इट। अरे बाप रे, वहां पर क्या हुआ, जैसे ही राधा रानी वहां निकली यशोदा मैया होश में आ गई, तो मैंने क्या किया, मेरे इतने अच्छे मित्र हैं, वो मित्र ऋषभानु महाराज के मित्र हैं ना, वो नंद बाबा के वो इतने अच्छे मित्र हैं, मेरी अच्छी इतनी सहेली है, और बिना पूछे उनका सलाह किए हुए मैंने डायरेक्टली उनको हल्दी लगा दिया पूरा, वो क्या कहेंगे अभी, यही कल्चर है नंदगांव का, हमने लड़के को भेजा था भोजन बनाने के लिए, आपने बहू बना के भेज दिया उसको, तो बड़ी दुखी हो जाती है वो, बड़े संकोच में, अभी क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, कितना क्रोध करते होंगे, क्या करते होंगे। तो शी इज़ वेरी अपसेट। उतने में वहाँ से बैलगाड़ी आती है मोती लेकर, समझते हैं कि नंद बरसाने से आ रहा है, तो आके वो लेटर देता है कि ये कीर्ति मैया ने और नंद वृषभानु महाराज ने भेजा आपके लिए। तो बड़े खुश हो जाते, वाह एटलीस्ट दे आर नॉट एंग्री विथ मी। तो वो देखते हैं कि ये इतने सुंदर मोती जो है वो हमारे पास नहीं है ऐसे मोती, अगर उन्होंने जो मोती भेजे उसके रिस्पॉन्स में हमको कुछ भेजना चाहिए ना, हमारे पास में इतने श्रेष्ठ मोती नहीं है। तो कृष्ण भगवान सुनते रहते हैं पीछे से, वो कहते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे एक मोती दे दो आप, मैं खेती करूंगा उसके, आपको खेत भर के मोती दूंगा। तो ठाका मार के हंसते हैं बड़े जोर से, अरे तो बालक है उसको क्या बताएं, खाली अन्न की खेती होती है, खाली धान्य की खेती होती है, मोती की खेती नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं, एक मोती ना मिलने पर चुरा लेते हैं और रात को जाकर आंगन में जाकर बोते हैं उसको, गड्ढा बनाकर फिर मिट्टी डालते हैं और जल भी देते हैं उसके ऊपर, और नेक्स्ट डे उससे से पौधा निकलता है। तो बुलाते हैं बाबा को, आओ आओ देखो देखो मैंने कल मोती बोया था तो आज उसका पौधा आया है। तो बड़े डोर से हंसते हैं, अरे इसको क्या पता है कि हम तो भाई कई दाने डाल चुके हैं तो उसमें से आया होगा कोई धान्य का। तो वो जिद करते, नहीं बाबा देखने को आ जाओ, मैया देखने को आ जाओ। दोनों फिर बालक की जिद रखने के लिए वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई पौधा आया है। फिर जोर से हंसते बोले, हाँ ठीक है हमने तो बहुत सारे दाने फेंके थे, बीज डाले थे ना बीज, उसका तो खेती आया होगा। नेक्स्ट डे बोलते हैं कि बाबा आ जाओ खेत भरा हुआ है मोती से। बहुत जोर से हंसते हैं, अरे बालक तो अज्ञान का अज्ञान से भरा हुआ है, छोटा सा बालक है उसको पता नहीं है। तो वो आने को तैयार नहीं, बोले नहीं नहीं बाबा आ जाओ पूरा खेत भरा हुआ है मोती से। हाथ पकड़े लेते देखते तो क्या पूरा खेत मोती से भरा हुआ है, चमक रहा है पूरा। तब जाकर हंसते नहीं है, तुरंत बिन लेते हैं मोती को, तुरंत उठा लेते हैं उसको और बैलगाड़ी में भर के उसको भेज देते हैं बरसाने में। तो राधारानी क्या करती हैं, जैसे मोती वहाँ पहुँचते हैं रत्न कुंड में जाती हैं और रत्न उसके उसको जमीन में बोकर रत्न की खेती करती है और फिर रत्न भेजते हैं वापस जाके। इस तरह से कई बार आदान प्रदान होता है। तो सब ब्रजवासी सोचते हैं कि अच्छा मौसम है, अच्छा वातावरण है, दोनों दोनों पार्टी राजी है तो शादी हो जाना चाहिए। सब लोग पहुँचते हैं पूर्णमासी के पास मुहूर्त निकालने के लिए कि अच्छा वातावरण है, सबके भी अनुकूलता है तो इनका विवाह का मुहूर्त निकाल दो, अभी शादी हो जानी चाहिए इनकी। तो पूर्णमासी बड़ी चतुर है, वो सोचती है नंदगांव बरसाने का रस क्या है, पूरा परकीय रस ही है तो उसका, पूरा छुप छुप के मिलना, इशारे करना, कोकिल बनना, संकेत वन कोकिला वन, ये सबकी लीला क्या है। जब तक विवाहित नहीं है तब तक तो इतना आनंद चल रहा है यहाँ पर छुप छुप के मिलने का सब कुछ, विवाह हो जाएगा तो पूरा ऑफिशियल हो जाएगा ना, वो दुल्हन बन के चले जाएगी वहाँ पर, फिर क्या छुप छुप के मिलना है, तो ऑफिशियल मिलेंगे फिर आनंद कैसा होगा ब्रज में। तो ये ब्रज का जो आनंद है परकीय रस का, उसको बनाए रखने के लिए पूर्णमासी जो सबकी गोपियों के गुरु हैं वो कहते हैं कि सभी स्टार जो है ना वो रॉन्ग जगह पर बैठे हुए हैं, अभी ये विवाह करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए अभी विवाह नहीं करना चाहिए, सब आगे पोस्टपोन कर देती हूँ। तो ये जब पोस्टपोन कर देती ना तभी सारी गोपियाँ व्याकुल हो जाती हैं, कह रही इतनी अच्छी इच्छा थी हमारी। तो सब गोपियाँ कार्तिक महीने के बाद में 30 दिन का व्रत करती है, कात्यायनी व्रत, और उस कात्यायनी व्रत के बाद में श्रुतिचारी गोपियों को जमुना जी में स्नान करने के लिए भगवान बुलाते हैं, वहाँ पर उनका वस्त्र धारण करते हैं, मतलब पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं उनको, और फिर रास में बुलाकर उनका नृत्य करते हैं उनके साथ में। और फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराया है, क्योंकि सभी गोपियों की इच्छा थी कि कृष्ण हमारे पति बने, सभी ब्रजवासी माताओं की इच्छा थी कि हमारे बालक बने, सभी गायों की इच्छा थी कि हमारा बछड़ा बने कृष्ण, सबको उनको सेवा करने की इच्छा थी, किसी को पति के रूप में करने की इच्छा थी, किसी को बालक बनने की, गाय को बछड़ा बनने की इच्छा थी। तो जब भगवान के लीला में जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए और बालकों में चुराया तो बछड़े और बालक कृष्ण भगवान बने, और 1 साल उन्होंने ब्रज में निवास किया और तभी उनका विवाह भी हो गया, जो पोस्टपोन हो गया था ना, तो स्वयं कृष्ण भगवान बाबा के पास गए, बोले अभी अच्छा मौसम है तो सबका विवाह कर दो, क्योंकि सभी ग्वाल बाल और सभी गोपियों के घर में बछड़े थे जितने भी गाय के, वो सब कृष्ण भगवान थे। तो सभी गायों को आनंद दिया दूध पीने का, सभी माताओं को आनंद दिया बछड़ा मतलब बालक बनने का उनका, सब कृष्ण भगवान बने थे ना, और सबकी शादी भी करके गोपियों को भी आनंद दिया इस तरह से। उसके बाद में मतलब ये लीला होने के पहले की लीला थी कि जब राधा रानी लौट के चली गई तो ढूंढे ढूंढे भगवान उसके पीछे पीछे आए और देखा प्रिया कुंड जो है वो पीला हो गया है, तो ऐसे अपने आप में स्वागत में पूछने लगे अपने आप को ही कि ये पीला रंग क्या है, ये पीला रंग क्या है। आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे अपने आप को, इसका मतलब क्या है, पीला रंग क्या है। और ऐसे बोलते 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 हाथ ऊपर उठाते हुए वो जल में प्रवेश करते हैं, घुटने से लेकर फिर कमर तक फिर छाती तक, ऐसे करते 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 अंदर प्रवेश करते हैं। और कुछ समय बाद में क्या होता है, एक मोर पंख और दो हाथ इतने ही पानी के ऊपर रहते हैं और पूरे पानी में घूमते सब जगह पर, और पूरे वातावरण में क्या आवाज़ गूंज रही है, ये पीली वस्तु क्या है, पीली वस्तु क्या है। तो सब ब्रजवासी वहाँ इकट्ठा होते हैं आवाज़ सुनकर कि कहाँ से आवाज़ गूंज रही है। देखते तो क्या है कि पीले सरोवर के अंदर एक मोर पंख और दो हाथ सब जगह घूम रहे हैं और सब जगह आवाज़ गूंज रही है। उसके बाद में वो दो जो हाथ है वो इतने ऊपर होते हैं, फिर मोर पंख के जगह पर मुख भार आता है, ऐसे करते करते धीरे धीरे भगवान पूरे भार आ जाते हैं, तो पूरे गोल्डन रंग के बन जाते हैं पीले रंग के। फिर भी वही सवाल कर रहे हैं कि ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है। हमारे जो बरसाना महाराज हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, उन्होंने बताया था कि कृष्ण अवतार में सबसे पहली बार कृष्ण भगवान ने बताया कि मैं अगले अवतार में इस रूप में आने वाला हूँ, वो पीली पोखर की कथा है। वहाँ पर भगवान ने सबसे पहले इस रूप में आकर दुनिया को बताया कि मैं अगले अवतार में इस रूप में आने वाला हूँ। और ये जो पीली वस्तु है, वो जो राधा रानी का प्रेम है, उसका रहस्य समझने के लिए मैं ये अवतार लूँगा। क्योंकि तभी उसका उत्तर उनको नहीं मिल रहा था कि पीली वस्तु में क्या आनंद क्या है इतना, कि इतना मुझे अति आनंद का अनुभव हो रहा है। ये पीली वस्तु राधा रानी का प्रेम है, जो समझने के लिए भगवान ने दोबारा अवतार लिया। और इसी पीली पोखर के पास में भगवान होली के समय पांडे को भेजते हैं, पांडे मतलब मैसेंजर, कि आपको होली खेलने के लिए बुला रहे हैं नंदगांव में। तो पांडे को बहुत धोते हैं सब लोग अच्छी तरह से। बाद में सब सखी राधा रानी आके बोलते हैं कि पांडे का क्या दोष है इसके अंदर, आपको तंग करना उसको है ना, तो इसको छोड़ दो आप, उसको तंग करेंगे। फिर कृष्ण भगवान आते हैं वहाँ पर पीली पोखर में, और पीली पोखर में खड़े होकर राधा रानी को पुकारते होली खेलने के लिए। तो उनकी पुकार सुनते हुए राधा रानी पीली पोखर से पुकारते हैं उनको, तो राधा रानी अपने महल के खिड़की के बाहर आती है, उनको इशारा करती है, फिर वो आके होली खेलते हैं। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।